सारे योद्धा और कितने लोग सब मारे गए, सब उलट उलट हो गए।
सुनने
चेष्टा भी दिखलाया, हम चेष्टा कर रहे हैं सुलहनामा के लिए, गए दुर्योधन से हाथ जोड़ा, सब कुछ किया, किंतु आखिर वही हुआ जो हो रहा है।
वो तो भगवान चाहते थे, नहीं चाहते थे।
भगवान चाहे ना चाहे, काल शक्ति तो चाहता, तो काल शक्ति
कौन है,
काल
शक्ति
तो भगवान ही है, वही तो चाहते थे।
वो जगत को के ऊपर में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, डायरेक्ट वो नहीं करते, उनकी विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार की ये सब चीजें हैं, उनके द्वारा ये सब अपने आप ये कंट्रोल और जो कुछ करना है ये सब होता है, उस पर दखलदाजी नहीं करते। विशेष स्थिति में सब कुछ ऑटोमेटिक रूप में चलता है। इसका भी इसके लिए कुछ लाभ भी होगा, ऐसा हम तो ऊपर से देख रहे हैं, इसको भीतर में क्या चीज है नहीं अनुमान करते। अच्छा, कितने आदमी मारे गए?
26
एक भी जीव मरा, शरीर का तो रूपांतर हुआ, ये बात ठीक है। क्या क्या वो सभ्यता ही एक तरह से चौपट हो गई, वो विद्या जिससे कि मंत्र पूत करके एक बाण चलाते थे और आग लग जाती थी, हजारों मील का दूर का आदमी को निशाना मान करके मारते और देश का देश एकदम जला करके खाक कर देते, वो सब वर्षा हो जाए धनुष बाण से ही, ये सब विद्या थी, वो भी करीब करीब लुप्त हो गई। किंतु लाभ क्या हुआ? महाभारत युद्ध से कुछ लाभ हुआ कि नहीं? क्या लाभ हुआ बताइए? भौतिक रूप में सब ध्वंस हुआ, किंतु परमार्थिक रूप में ये बड़ा लाभ हुआ, जितने नास्तिक थे, धर्म के विरोधी थे, धर्म कर्म कुछ नहीं मानते, अश्रुत विचार के लोग हो गए थे, उन लोगों को कृष्ण ने चलाकी चतुराशी से उनको हटा करके, बल्कि उनको क्या किया, उनको मरवा करके, मार करके और उनको मुक्ति दे दी। अब इस जगत में तुम लोगों का जन्म नहीं होगा जो बदमाशी करेगा, धर्म का विरोध करेगा, उनको मुक्ति दे दी। देखिए, उनका भी कल्याण कर दिया और जगत में ये जो रहते वो लोग दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, तो ये सब भगवान का विरोधी बात पर धर्म नष्ट हो जाता है, गीता का उपदेश नहीं आता है। ये सब चीजें
से फायदा हो गया,
ये परमार्थिक एक लाभ संसार के लिए वो दे, नहीं तो वो लोग कुछ दिनों के बाद में कृष्ण नहीं रहने पर जगत का और भी विध्वंस कर। भौतिक हानि होने पर भी परमार्थिक लाभ बहुत हुआ। नहीं तो फिर ये महाभारत इत्यादि का जो था विचार उपदेश अच्छे बुरे का,
इसमें क्या लाभ होगा?
यदि कर्ण को दुर्योधन को दंड नहीं मिला होता तो वो सब लोग ऐसे लोग पनपते, होता कि नहीं? तो क्या होता, धर्म का विध्वंस ये सब हो जाता।
ये नहीं
अच्छा, वैभव क्या नष्ट हुआ, क्या बन नष्ट, क्या हुआ?
पुल, रेलगाड़ी और मकान,
क्या हुआ इस
मिट्टी
वो मिट्टी से निकला था वो लोहा लकड़, फिर उसमें मिल गया
दो तीन और रख दो कर दो
ये फाइव एलिमेंट,
ऊपर से ऐसा मालूम पड़ता है जी हाँ हाँ कार ये हो गया। एक कण भी नष्ट न हुआ, किंतु इस फूल बादियों के लिए सभी कुछ हो गया,
बहुत नुकसान हुआ मिलियन डॉलर का।
लेकिन महाभारत फिर मिलियन डॉलर
मतलब परीक्षित महाराज आए, उसके बाद में परीक्षित महाराज आए दिल्ली के गद्दी पर और उन्होंने सारे भारत वर्ष में ब्रजमंडल को जो लुप्त हो गया था उसको फिर से बसाया, श्रीमद भागवत का प्रचार हुआ देश विदेश में।
रख लो कोई और आ जाए। हाँ जी,
इस तरह से बहुत बड़ा भारी लाभ है। ये प्रलय होता है, ये क्या प्रलय है, ये तो अभी आंशिक प्रलय भी नहीं है, ऐसा प्रलय होगा ऐसा वर्णन है। ये सारा भूमंडल क्या ब्रह्मांड एकदम चौपट हो जाएगा, सब जल करके खाक हो जाएगा और सब पानी हो जाएगा। पानी के बाद में पानी भी हट करके केवल मात्र हवा रहेगी, हवा भी उसमें से डाइल्यूशन होकर के किस प्रकार से एकदम आकाश के शून्य के रूप में बदल जाएगा, और ये आकाश भी नहीं रहेगा, प्रकृति एकदम रहेगी शून्य। और इसको ब्रह्मा लेकर के गर्भदशाई के अंदर में चले जाएगी, सारी सृष्टि एकदम विलुप्त हो जाएगी। किंतु नष्ट क्या हुआ,
नष्ट नहीं,
इसको उपमा दे रहे हैं, इसको उपमा दे रहे हैं। एक किसान ने खेती की, खेती करने के बाद में उसमें बीज डाला गेहूं, और काफी दूर तक खेती हुई, खेत लहलहाने लग गया, चारों तरफ में हरियाली हो गई, कृषक को बड़ा आनंद हुआ। अब उसकी चौकसी देने लगा चौकीदारी, ये कोई गाय चर न जाए, और चारों तरफ से उसके लिए हदबंदी कर दी, कांटे लगा दिए। अब धीरे धीरे उसमें जबकि बाल निकल आई और जब लहलहाने लगी, देख करके उसका हृदय एकदम और भर गया, और जब उसकी बालें पकी और उसमें गेहूं के दाने एकदम पुष्ट हो गए, तब क्या किया, जल्दी से चारों तरफ से मंच लगा करके उसकी रक्षा, ये पूरा पुष्ट हो गया। जब पूरा पुष्ट हो गया तो जिस खेत को उसने बोया था, पौधों को रक्षा की थी, अब हंसिया लेकर के काटने लगा निष्ठुर होकर के, हैं? काटना चाहिए, वृक्ष को लगाया और उसी को काट रहा है,
इसलिए
काट लिया और काट करके गेहूं को झाड़ा,
गेहूं चाहिए इसीलिए तो काटा उसने।
अब काटा, सुनो तो, काट तो दिया, और काट करके उसको दाने, उसको किसी प्रकार से मशीन से हो बैलों से हो जैसे उसको निकाले,
घोट घोट के निकाले, ऐसे भी नहीं।
और वो कहाँ रखेगा, वो भूसा और ये सब उनको जला करके खत्म कर दिया और उसको घर में रख लिया, और उसमें से जो जरूरत थी उसको खाया और बाकी को रख दिया बीज, और दूसरे साल में थोड़ा सा दिया और पूरा पूरा का पूरा भर गया। क्या खत्म हुआ, क्या नष्ट हुआ, यदि वो खेत को नहीं काटता तो क्या होता, काम में आता। इसलिए महाभारत युद्ध नहीं हो, ये प्रलय न हो, प्रलय होने पर भी जीव नहीं कोई मरता, जीव अपने शुद्ध स्वरूप में रह करके ब्रह्मा जी के शरीर में रह करके प्रभु के साथ में मिल जाता है, और फिर जब इच्छा होती है प्रभु की, उन बीजों को उसमें से निकाल करके और जगत के रूप में दे करके पुरुष स्त्री पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधे ये सब कुछ फिर अब जैसा करते हैं, रूपांतर होता रहता है, जीव कहीं नष्ट नहीं होता, अजर अमर है भगवान की तरफ। केवल ये सब खेती होती है, अर्थात भगवान से जो भूले हुए हैं जीव हमारे जैसे जैसे, और इसमें एकदम मस्त है, उनको ठोकर देने के लिए ये सब दुख, ठोकर देने के लिए, मरेगा तो कोई नहीं, तो ठोकर देने के लिए, ये चेतो इसमें सुख नहीं है, धर्म के पथ पर रहो चलो, और यही सर्वस्व नहीं है, एक दिन हम इसको ध्वंस कर देंगे, ये काना कौड़ी के बराबर इसका मूल्य नहीं है। प्रेम की शिक्षा करो, घर वालों से पहले प्रेम करो, पहले प्रेम किसे करो, माता पिता से प्रेम करो, जिसने जन्म दिया वो तुम्हारे लिए वही भगवान है, यही तो पहले शिक्षा, माता पिता ही गुरु है पहले, उनको कदर करना सीखो, आदर करना सीखो, प्रेम करना सीखो, फिर पत्नी से, उसके पति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसमें प्रेम को प्रधान रख करके काम और भोग प्रधान मत रखो, यदि काम और ये किया तो ध्वंस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा जीवन निरस हो जाएगा, इसलिए खूब सोच समझ करके प्रेम करो, काम में अंधे ना हो है? इसके बाद में पास के पड़ोसी जो है सबसे प्रेम रखो, सब में भगवान है, और फिर उसके बाद में तब भगवान किसी को भेज करके अपने विशेष में, देखो सब में भगवान है किंतु फिर भी भगवान की सत्ता एक पृथक रूप में भी है ना, सब में भगवान है ये ठीक है किंतु सभी भगवान नहीं है, सब लोटों में पानी है एक किंतु सब लोटा एक नहीं है, समुद्र में लोटे को डुबा दो ऊपर से दिखेगा सब पानी किंतु लोटा भी पानी नहीं हो जाएगा, उसी प्रकार से जो जीव है वो जीव ही रहेंगे, वो भगवान कभी नहीं होंगे या ये कभी नष्ट भी नहीं होंगे, बस भगवान के साथ में वही जो प्रेम जो पहले माता पिता के प्रति था, स्त्री के प्रति था, बाल बच्चों के प्रति था, संसारिक वस्तुओं के प्रति जो प्रेम तुम्हारा था, अब उसको शुद्ध करके यदि लगाए तो ये लोग भी सुखी रहेंगे तुम भी सुखी रहेगा, और यदि भगवान के प्रति तुमने प्रेम नहीं किया और इन्हीं लोगों में रहा तो ये भी ध्वंस हो जाएंगे तुम भी ध्वंस हो जाएगा, सब कुछ कहीं मिल जाएगा,
फिर जापान हो जाएगा।
अभी तो क्या वो हिरोशिमा या किरोशिमा में तो इसे भी और अधिक हुआ था, इसमें क्या हुआ
हिरोशिमा तो बहुत सारा,
अब देखा ना एक दो महीने का बाद में फिर नया बन जाएगा, इसी का कुछ जो मर गए सो तो मर गए जन्म लेंगे, फिर जो आज जो बच गए हैं वो फिर वैसी संपत्ति जो वहां पर करने में अधिक दिन नहीं लगे, बहुत जल्दी से उसको ठीक कर लेंगे,
पर उनमें से कोई समझ पाएगा कि हाँ ये तो नाशवान चीजें थी भगवान,
तो वो समझाने वाला कोई
हो,
ये तो भारतीय घर से एक ऐसा है जिसमें ये सब सांत्वना और ये सब विचार है और कहीं नहीं है,
कहाँ पर है
भारत और यहाँ का विचार यदि कुछ कुछ है तो आप लोगों को सांत्वना दे सकता है और कहीं नहीं है, हम लोगों जैसा त्यागी विषय में कहीं नहीं है,
सहनशील भी बहुत ज्यादा हम लोग,
वो लोग समाज की सेवा करने वाले बहुत से हैं जो घर बार छोड़ करके करते हैं,
सहनशील का भी
है, ये पादरी लोग इस क्रिश्चियन का प्रचार करते हैं किंतु उससे पे ले करके हमको कोई पे देता है, हम अपनी सिद्धांत पर विचारों पर एकदम दृढ़ होकर के अनुभूति करके इसके क्षेत्र में उतरे, हम आप लोगों से प्यार करने के लिए स्नेह करने के लिए या आप लोगों से कोई चीज लेने के लिए या कोई भौतिक चीज देने के लिए लेने के लिए नहीं, एक दृढ़ विश्वास के साथ में सबको लेकर के भगवान के चरणों में पहुंचे, बस एक यही उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य ऐसा उन लोगों में नहीं है, पादरियों में और ये सब
नहीं।
हम लोग कहेंगे भगवान से ये प्रार्थना मत करो जो प्रभु हमको रोटी और रोजी दे, ये तो तुम्हारे कर्म से मिलेगा, अब वो क्या कहेंगे गॉड गिव मी ब्रेड एंड बटर, हम लोग प्रभु को ये इसके लिए कष्ट नहीं देंगे, हम ब्रेड और बटर प्रभु को देंगे तुम ये खाओ, और जो हमारा खाने के लिए इसलिए संसारिक चीज कोई नष्ट भी हो जाए उसके लिए चिंता करने की कोई जरूर हमारा कुछ भी नहीं जाए, कोई यदि भक्ति हानि हुई प्रभु के प्रति जो प्रीति है हमारे शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा है ये यदि टूटी तो सभी कुछ गया और बाकी कुछ नहीं गया, उसको तो हम जो छोड़ करके आए देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी को देखो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बाघ भालू सबको नचाते हुए हरि नाम देते हुए और छोड़ करके चलते, विष्णु प्रिया जी को देखा है
सुना है
कैसा प्यार, अभी छोटी सी लड़की उसको छोड़ करके चले आए, गंगा में कूद गए, हमारे बाद में हमारी स्त्री क्या खाएगी, मैया कहाँ रहेगी, क्या करेगी, देखते हैं विश्व ब्रह्मांड का पालन करने वाले जो हैं इसी को केवल छोड़ करके बाकी सबको करेंगे, इस मैया को नहीं करेंगे, इसलिए आत्मविश्वास रखना। द्रौपदी पांचों पतियों के साथ में जब राज्य को छोड़ करके हार गए जुए में, सब कुछ छोड़ इतना बड़ा भारी इंद्रप्रस्थ का वैभव छोड़ करके कपड़े लगते तक भी उनके समय और छोड़ करके वन की तरफ में जा रहे हैं, उसमें क्या स्थिति होगी बोलो तो है? वो तो भगवत भक्त ही और ये भगवान भक्त ही, इसलिए कोई परवाह नहीं, हम लोग रहते तो देखते जो क्या कभी भी कोई संसारिक कष्ट है उसको समझो, ये हमारे लिए विघ्न नहीं,
सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए,
हम नहीं, हमको आगे बढ़ाने के लिए है। यदि संसार में विघ्न बाधा न हो कोई आदमी उन्नत नहीं हो सकता है। मैं कल स्वामी जी की बात कर रहा था, ऋषि भक्ति वेदांत जी का, उन्होंने कोलकाते में सबसे पहले युवावस्था में एक बंगाल कमिकल में मैनेजरी का पद लिया, मैनेजर हुए, बड़े ब्रिलियंट थे और कुछ दिनों में उसको चमका दिया, उसकी आमदनी चौगुनी पचगुनी करा दिया। अब उन्होंने सोचा जैसे अब मैं पृथक करके कोई केमिकल का कोई कुछ कारखाना आरंभ कर, और उन्होंने आकर के इलाहाबाद में उसको छोड़ दिया और बड़ा बिजनेस बनाने के लिए वहां पर स्थापित। और इसी बीच में प्रभुपाद जी से भेंट हो गई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने मंत्र लिया, दीक्षा हुई। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी ने कहा था जो अंग्रेजी में
ट्रांसलेशन,
नहीं अंग्रेजी में कोई प्रबंध लिखो, बैक टू गॉड है पीछे हुआ, पहले था
हार्मोनिस्ट,
हार्मोनिस्ट प्रभुपाद जी के समय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय, उसमें प्रबंध दो और इसका तुम प्रचार करो, तुमको हम एडिटर कर देते हैं और पाश्चात्य देशों में तुम प्रचार करो। उस समय में ये कर रहे थे जो मुझको बहुत डर लगा, मैं डर गया। भागवत का एक श्लोक उन्होंने देखा, जदाजस्य अनुग्रहणामि
हरिष्ये
तद्धनं, हरिष्ये हरण करूंगा, सनई धीरे धीरे, धनई धनई माने क्या, धन माने क्या, स्त्री धन, पुत्र धन, गोधन, ये रुपया पैसे का धन, ये संसार में जिसको हम अपना धन मानते हैं, संपत्ति मानते हैं, क्रमशः जिसको मैं स्नेह करता हूं, जिस पर निष्कपट दया करता हूं, क्योंकि इसी का नाम संसार को भव सागर को पार करना है। तो सनई सनई, वो कहते प्रभु एक ही बार कर ले तू, सनई सनई क्यों करते हैं,
एक बार करने में सहन नहीं कर पाएंगे,
सहन नहीं कर पाएंगे
हैं, इसलिए कभी कभी धारण करके थोड़ा सा दे देते हैं, अच्छा अब मिला, अब मिला,
सुख के साथ दुख भी देते,
थोड़ा सा और ले लेते हैं, और धीरे धीरे कुछ करते करते। तो स्वामी जी कह रहे थे, हमसे कह रहे हैं, अभी संन्यास नहीं लिए, अभी विचार चल रहा है, हमने कहा जी संन्यास लीजिए, गुरु जी महाराज जी उस समय आगे, उन्होंने कहा भी ये संन्यास, और एक बूढ़े थे 94 वर्ष के, कहे तुम संन्यास लेगा तो हम भी तुम्हारे साथ में, हम संन्यास ले,
मुनि महाराज जी,
मुनि महाराज थे 95 वर्ष की उम्र में,
उनको स्वप्न भी आया था प्रभुपाद,
तो वो तो पीछे की बात रही, पहले तो सुनो तो ये प्रैक्टिकल क्या हुआ। तो हमसे कह रहे थे जी मैं डरता था ये क्या होगा, हरे ये हमारा ये सब कुछ हरण कर लेंगे। तो देखा जाए जब फैक्ट्री जब अलग से मेडिकल हमने किया, काफी उसमें लोगों को रखा और चलने लगा काम, किंतु कुछ दिनों में वो कारोबार हमारा ठप हो गया, मैं नहीं चला सका, तो उसको मैंने बेच दिया। तो बेच दिया तो अब क्या करूं, तो एक मेडिकल की दुकान करूं, क्योंकि हमको मेडिकल की ये सब ज्ञान है। बस हमने जवाहरलाल के नेहरू के कोठी के पास ही में चौरास्ते पर हमने एक अच्छी सी दुकान, और दुकानों में दुकान दवाइयां और ये सब भर करके सब ठीक, 1-2 वर्ष चली, और इसके बाद में बहुत चेष्टा करने पर भी उस दुकान को भी बेच दिया। तब मैं एजेंसी करने लगा, एजेंसी लेकर के वहां पर दवा देना, दिल्ली में ले आना, लखनऊ में, इधर ये करने लगा। कुछ दिनों के बाद में वो भी सब खत्म हो गया, एक पैसे नहीं रहे, क्या खाऊं, जैसे वो कह रहे थे हमसे, मैंने कहा जैसे मैं जो डर रहा था वही हुआ, मैं जो कोई काम हाथ में लेता हूँ ऐसा हमारा दुर्भाग्य, ये सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया, अब बिजनेस अब कुछ है नहीं जो मैं कर सकूं। उसी समय में असहाय होकर के मठ में आए थे, हमने कहा जी ये तो प्रभु की बड़ी आप पर कृपा हुई, आपकी स्त्री आपको प्यार करती है, आप तो नहीं, तो वो तो कहती है जैसे पैसा नहीं लाता ये अलग हो जाए तो बल्कि इसका भार हम लोगों को पड़ा। बेटों ने कहा जी सब पिताजी अब तो कुछ कमाता नहीं है, कुछ देता नहीं है, तो क्या होगा, ये अलग ही रहे तो अच्छा है, चले जाए, आपको संसार वाले कौन चाहते हैं, आप तो कोई नहीं चाहता, तो आप किस लिए बैठे हैं बतलाइए तो। आप जल्दी से संन्यास लेकर के भगवान का भक्ति कीजिए, प्रचार की देखिए, जैसे यह वैभव तो आपके चरणों में लौटेगा। तो अब इसका उत्तर, इसका मतलब है जैसे आप धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं, गुरु जी आए उनसे एक बार कहा, गुरु जी की बात मान गए, अब ये तय हुआ कि जैसे संन्यास लेंगे। बस विश्वरूप जी का जिस दिन खौर होता है कार्तिक महीने पहले
भाद्रो में,
उस समय में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद में कुछ दिनों के बाद में दिल्ली आए, और दिल्ली से ही वहां जाने की अमेरिका में व्यवस्था हुई, और कुछ दिनों में वह विश्व का वैभव जो लाख बार कार बार करते उनके चरणों में डोलने लगा, बिना मांगे आया कि नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं,
और
प्रतिष्ठा घर में रहते तो उनको उनके पीठ पर सूप चलता, सूप चलना जानती है, पत्नी बिगड़ करके कही आज कुछ ले आए नहीं, एक सूप मारा सूप देखा है कभी
फटका होता है सामान,
और तुम लोग कहाँ से देखेगी सब मशीन हो
तुमने सूप देखा
सार सार को गही करे थोत दे उड़ाए
थोथे को उड़ा देती है, तो उस सूप से मार दिया पति को। अरे उनका नाम सुना है तुकाराम का, तुकाराम जी धनी आदमी थे, भगवान का भजन करने लगे, धीरे धीरे सांसारिक चीजों के प्रति उदासीन हो गए, जैसे रामचंद्र जी हैं, कार खड़ी कर दिया बाहर में, कार का दरवाजा खुला है, तो ख्याल नहीं है ना, और आराम के साथ में लूटाने वाले आए और निकाल करके तुकाराम जी का ऐसा ही घर में आने वाला सामान भी लोगों को दे देते। एक दिन उनके घर में खाने का भी नहीं रहा,
वो भी आने वाला
है, हम तो कहीं नहीं गए, हम तुमको लेकर के वृंदावन में बैठा लेंगे अपनी गोदी में, कोई चिंता नहीं रहेगी, दोनों हाथ से बांसुरी बजाना तो वो तुका